हम सब मिलकर के ओम की ध्वनि लगाते हुए शांति कहेंगे, जैसे पहले एक बार किया था। डीप श्वास लेकर के ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सारे प्रश्न आए कई सेशंस के बाद, पर ये जो गीत सेशन के पहले बजता है, फिर सेशन के बाद गीत बजता है, फिर नए सेशन के पहले गीत बजता है, ये प्रश्न किसी ने भी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करते हो आप। सबको ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, लेकिन ऐसी ब्रेक ले जिसमें कुछ जमा हो, जिसमें हमें कुछ प्रॉफिट हो, कुछ हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। इसीलिए ये केवल टॉक के आगे टॉक के पीछे की बात नहीं है, हर एक्टिविटी के पहले, हर एक्टिविटी के एंड में आपको अपने लिए टाइम देना है, भले फिर वो एक मिनट हो, आधी मिनट हो, दो मिनट हो। आपको पता है मीटिंग है, मीटिंग के पहले, मीटिंग के बाद, फिर ही सेकंड एक्टिविटी आरंभ करो। अगर ये प्रैक्टिस आप डाल देंगे ना, और किसी को पता नहीं चलने वाला है, सो देयर इज नथिंग टू शो अबाउट इट, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए ये बहुत अच्छा है। और उसमें मेडिटेशन करते हो तो ये भी पता है कि इतना ही टाइम हमको शिव बाबा के साथ कनेक्ट होने में भी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, कि भाई हम एक्टिविटी में बहुत ही तेजी से दौड़ रहे हैं, तो एक आध ट्रैफिक का कंट्रोल, रेड सिग्नल आता है ना, ऐसे अपने को दे दो। तो कभी वो सिग्नल एक मिनट केवल होता है, कभी दो मिनट, कभी तीन मिनट, ऐसे वो ब्रेक अपने आप को दो, अपने आप को महसूस करो कैसा लग रहा है। अगर हैवीनेस है, जल्दी से शिव बाबा के पास जाओ, एनर्जी ले लो, मांगना थोड़ी है, एनर्जी ले लो, माना उसी कॉन्शियसनेस में बैठ जाओ, बाबा शक्ति दे रहा है, एंड फिर वापस एक्टिविटी की ओर जाओ। गाड़ी में बैठने जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के पहले एक मिनट, गाड़ी के उतरते समय, माना ऐसा नहीं कि गाड़ी रुके फिर आप करो, नहीं, आपको पता है कि अभी घर आ गया है, गेट के अंदर गाड़ी चली गई है, तो उस समय कर लो, बिकॉज फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे। तो ये ब्रेक बहुत ही वैल्यूएबल है हम सबके लिए, बहुत ही मूल्यवान है। आपको बाद में पता चलेगा, जब रेगुलर बेसिस पर आप करेंगे तो आप चेंज देखेंगे आपके डिसीशंस में, आपके एक्सपीरियंसेस में, आपके खुद के कॉन्वर्सेशंस में बहुत अंतर आएगा। आज हम स्क्रीन पे आ रहा है जी, आज हम जैसे आपने एक दिन सृष्टि को एक चक्र के रूप में देखा था, याद है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान, नहीं, चक्र के रूप में, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। फिर नेक्स्ट टाइम कर्म फिलॉसफी के लेसन में आपने वही चार युग एक सीढ़ी के रूप में देखा, जिसमें आपने जन्मों के बारे में भी समझा और कर्मों के बारे में भी समझा। तो आज हम वही बात, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट में, एक वृक्ष के रूप में देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट सबका अलग अलग है। सृष्टि चक्र का जो कॉन्टेक्स्ट था वो था आत्मा के चेंजेस कौन कौन से आते हैं आत्मा की जर्नी में, उसकी अलग अलग अवस्थाएं, तो वो देखा था। सीढ़ी वाले चित्र में हमने ये देखा कि भाई आत्मा के कितने जन्म होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कितने जन्म हो सकते हैं, और अलग अलग समय पर कैसे अलग अलग प्रकार के कर्म हम करते हैं। अब कल्प वृक्ष में, जिसे हम कहते हैं कल्प माना 5000 वर्ष इज इक्वल टू एक कल्प, एक युग माना कितना 1250, एक कल्प माना टोटल सारे युगों को मिला के 5000 वर्षों का एक कल्प दर्शाने वाला वृक्ष, उसे गीता में नाम दिया है कल्प वृक्ष। वैसे ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, साइड में आ रहा है। अब इस सेशन का लक्ष्य कौन सा होगा? धर्म को समझना। धर्म किसके साथ कनेक्टेड होता है? कर्म के साथ। और कर्म किसके साथ कनेक्टेड होता है? मेरी अपनी स्थिति के साथ, माय स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए धर्म को हमेशा एक फाउंडेशन के रूप में देखा जाता है। पर आज हम हरेक को पूछे तो हरेक अपनी अपनी रीति से अलग अलग बातें जिस धर्म के है उस अनुसार सुनाएंगे, पर हम कुछ और नई बात करेंगे। अगर हमें सच्चा धर्म फॉलो करना है तो हमें उसका आधार समझना होगा कि आधार क्या है, और हम फिर देखेंगे कि कैसे मनुष्य आत्माएं कैसे अलग अलग धर्म के भी फेजेस से पास हुई है। हम सब अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस जन्म में, केवल वो नहीं है, बहुत सारे फेजेस हमने अनुभव किए हैं अपने लाइफ में। शायद हमें याद नहीं होगा, लेकिन परमात्मा तो सारा देखते हैं ना, उनको तो सारा पता है हम कौन कौन से अनुभव से पास हुए हैं। तो उन्होंने जो बताया है अब हम उस परसेप्शन से देखेंगे। जैसे परिवार का झाड़ होता है, माँ बाप होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, ऐसे वो एक जेनोलॉजिकल ट्री बढ़ता जाता है, नहीं ना? कईयों को तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मेरे फादर का, फिर मेरे फादर मतलब दादाजी का, फिर दादाजी के फादर का क्या नाम था, क्या करते थे, और सारा वर्णन होता है उनके पास पूरी पीढ़ी का। तो ये कल्पवृक्ष भी तो पीढ़ियों की ही बात है ना। अब हमको याद नहीं है कि हमारी पीढ़ियां कौन कौन सी सब थी, पर अगर इसमें आप समझेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि मैं कौन सी झाड़ के कौन से फेज में आऊंगा और उसमें मैं क्या क्या धर्म को किस रीति से समझूंगा, ये आपको पता चलेगा। तो गीता में वर्णित इस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, कौन सा झाड़ दिखाते हैं? क्रिसमस ट्री, है ना? और साधु संतों के इसमें दिखाते हैं कि भाई वो झाड़ के नीचे ही बैठ के तपस्या करते, तो मना कोई ऐसा है नहीं जो झाड़ में न माने कोई ना कोई रीति से। सो झाड़ का जो सिंबल है वो सभी धर्मों में बड़ा महत्व का है, तो उसी के लिए हम समझेंगे। कल्पवृक्ष के लिए दो बातें बताई है गीता में कि बहुत वरदानी वृक्ष है ये, बहुत वरदानी। वरदानी माना क्या? एक तो वो उल्टा वृक्ष है, जैसे एक वृक्ष होता है संसार में ऐसे नहीं, वो उल्टा है, इन्वर्टेड। अभी हमने तो कभी कोई इन्वर्टेड कोई देखा है किसी ने भी झाड़? तो हमारे फाउंडर कहते थे कलकत्ता में जाओ, वहां एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है, उसका फाउंडेशन ही नहीं दिखता है, वो एक ही झाड़ पूरा नीचे वापस आकर के उसी में से अलग अलग डालियां और इतना विस्तार को पाया है कि उसका फाउंडेशन दिखता नहीं है. बस ऐसा एक वृक्ष है और जंगलों में ऐसे वृक्ष होंगे. पर जिस रीति से कल्प वृक्ष के बारे में बताया, ऐसा तो कोई वृक्ष कभी देखा नहीं है. लेकिन कहते हैं उसके नीचे जो बैठते थे, माना जो साधु ऋषि मुनि होते थे ना, अगर उनको देवताएं कल्प वृक्ष का वरदान दे देना तो वो बहुत खुश हो जाते थे. उनको लगता था कि हमारी तपस्या का फल मिल गया हमें, अब हम अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे ना तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. इस प्रकार की कहानियां हैं माइथोलॉजी में. लेकिन सचमुच ऐसा वृक्ष होता तो हम काम क्यों करते, हम सब जाके उसके नीचे ही बैठ जाते, सब सहज मिल जाता. लेकिन हमको तो पता है एक पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा मेहनत के बिना. तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब हम इसी झाड़ को एक पूरी ह्यूमैनिटी का, मानवता का झाड़ अगर हम देखें, तो इस मानवता का झाड़ का जो बीज है वो कौन है? शिव बाबा, परमात्मा, गॉड हिमसेल्फ. वो बीज है, पूरे झाड़ का बीज. बीज छोटा होता है ना, और दिखता भी नहीं है धरती के नीचे, एकदम सिंपल दिखेगा. और हमने तो भगवान के लिए पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन किए थे, पर वो है बड़े सिंपल और दिखते भी नहीं. पर वो सीड है इस पूरे कल्प वृक्ष के, वो चैतन्य बीज है. इसका मतलब क्या हुआ? भले हम झाड़ पे कहीं भी हो, हम सब कहां कनेक्टेड है? शिव बाबा से. जाने कि नहीं जाने, हम सब कनेक्टेड है. तो बीज कहां रहता है? शिव बाबा कहां रहते हैं? हमने देखा ना, परमधाम में. तो बीज ऊपर हो गया और ये झाड़ कहां बढ़ रहा है? नीचे, इस सृष्टि पर. तो इसलिए ये उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर है और सारा झाड़ का निर्माण नीचे की ओर हो रहा है. अब बताओ, हम इस उल्टे झाड़ में अभी आपको क्या लगता है कहां पर है? वो हमें रिकग्नाइज करना है कि अभी हम इस झाड़ में कौन सी डाली पे पत्ते के रूप में है. देखते हैं हम, आज हम देखते हैं पूरा पॉपुलेशन अति को पाया है, राइट? और हमको लगता है अभी भी कितने आएंगे, अभी भी कितने, यू नो वी आर थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बातें चल रही है अभी. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण से दुख भी इतना हमको मिल रहा है. और आज हम देखते हैं कि इतने जो बैठे ना इधर, एक एक कोई अलग अलग को मान रहे हैं. कोई कोई संस्था के साथ जुड़ा है, कोई एक देवता का फॉलोवर है, कोई एक कोई साधु का फॉलोवर है, कोई गुरु का चेला है. सब अलग अलग है ना? सही बात है ना? ऐसे कब होता है? एक ही परिवार के चार मेंबर, एक नास्तिक होगा, एक रोज पूजा करेगा घर में, एक को घर में पूजा करने को मन नहीं करता है, लेकिन कभी भी कोई आजू बाजू में संत साधु आते हैं तो उनको मिलने का मन करता है. कोई को कुछ और. ऐसा कब होगा? ऐसी परिस्थिति कब आएगी? लास्ट में, माना हर एक आत्मा का अपने अनुभव के आधार से एक बिलीफ स्टार्ट होता है, और डेफिनेटली वो कोई उसके लिए नई बात नहीं है. एक जर्नी क्रॉस करके उसके अंदर वो आया होगा ना कि नहीं अब मुझे ये करना है. कितने अनुभवों से बाद उसने सोचा होगा कि अब मुझे ये करना है. या तो कितना समय से हम भटकते आए हैं, कभी इस डाल को पकड़ना चाह रहे हैं, कभी इस डाल को पकड़ना चाह रहे हैं, कभी इस डाल को पकड़ना चाह रहे हैं. शुरू तो ऐसे नहीं हुआ होगा. शुरू में जब हम परमधाम से आए होंगे तो डेफिनेट होगा ना, हम जहां भी आए होंगे हमको क्या लगा होगा, आई एम इन माई परफेक्ट प्लेस. ऐसा होगा ना कि पहले से ही हम भटकते होंगे। परमधाम से आके कोई भटकेगा भला? परमधाम तो एकदम पावरफुल प्योर, वहां से जो आत्मा आएगी आके तुरंत कैसे भटकेगी? जब भी वृक्ष में जहां भी आएगी दैट सोल विल बी परफेक्ट, दैट सोल विल बी लविंग प्योर पावरफुल। ऐसा होगा ना? परम धाम से कौन आ सकता है ऐसी अवस्था से? भले टाइम कोई भी हो, कभी भी आवे, लेकिन होगा तो उसका बेस्ट टाइम, गोल्डन टाइम। तो अभी हम सब क्या अपने गोल्डन टाइम में है? प्रश्न है। शायद एक मिनट में हम नहीं भी निर्णय ले सकते हैं। गोल्डन टाइम माना क्या? बॉडी भी डिजीज फ्री, मन भी एकदम शांत, टेंशन फ्री, एकदम कूल माइंडेड, संबंध जो है अपने सारे एकदम पॉजिटिव, और अपने में फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी चैलेंज आती है हम अपनी शक्ति से उसको पार करते हैं, हम अपने लिए नहीं दूसरों को भी मदद करते हैं। तो ऐसा गोल्डन पीरियड अभी किसी की लाइफ में है? कंप्लीट सब कुछ है, बैंक बैलेंस के लिए चिंता भी नहीं है। कोई गोल्डन पीरियड में? अच्छा, सिल्वर पीरियड में? ऐसा नहीं समझो नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है मैं सिल्वर पीरियड में हूं, सिल्वर पीरियड माना 100% से निकाल के 80-75% करो। कॉपर पीरियड? कॉपर पीरियड माना समझो आप 40-50% आपको लगता है कि नो एवरीथिंग इज गुड, 40-50% कि नहीं ये प्रॉब्लम है लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल डिजीज फ्री है, नहीं रिलेशनशिप का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन फाइनेंस तो बराबर है मेरे पास, नहीं और आ सकता है फाइनेंस पर अभी ठीक है, ये कॉपर पीरियड हो सकता है? कॉपर? हाँ जी, हाँ जरूर। अगर आपकी लाइफ में हर एक फैक्टर हर एक सेक्टर में 100% है, रिलेशनशिप डिजीज फ्री, बॉडी बैलेंस भरपूर, कोई चिंता का सर्कमस्टेंस नहीं, तो गोल्डन पीरियड। अगर उस 100% में से 80% तक आया है, 20% प्रॉब्लम्स है, तो सिल्वर पीरियड। अगर 50% 40-50% तक आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम्स है लेकिन 40-50% तक आई फील इट इज ऑल नाइस, तो कॉपर पीरियड। और आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे हर सिचुएशन में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, हर कनेक्शन में हर सेक्टर में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कुछ ना कुछ तकलीफ है हर एक क्षेत्र में, तो कौन सा पीरियड बोलेंगे? आयरन पीरियड। जैसे लोहा होता है ना, कैसे रस्ट हो जाता है फटाफट से, टाइम नहीं लगाता है। ऐसे हम आए तो सही, पर अभी मेरा ऐसा पीरियड चल रहा है कि जिसमें मुझे जल्दी से मैं अफेक्ट हो जाती हूं, छोटा सा प्रॉब्लम आता है अफेक्ट हो जाती हूं। आई एम कॉट यू नो इन द वेब ऑफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय, अहंकार और मतलब जैसे द्वेष हेट्रेड, इन सब में मैं फंस जाता हूं बहुत जल्दी, तो उसको कौन सा पीरियड बोलेंगे? आयन। अब इतनी समझ के आधार से अगर हम देखें तो सारे कल्प वृक्ष में ये चार पीरियड होंगे? कोई ऐसे होंगे जो पूरा गोल्डन पीरियड अनुभव करके सिल्वर पीरियड में आएगा? कोई जो है गोल्डन पीरियड के बीच से कंटिन्यू करेगा, आधा गोल्डन पीरियड में नहीं आता है? कोई गोल्डन पीरियड में आया ही नहीं, सीधा सिल्वर पीरियड में आया? तो ऐसे सबका अनुभव सारे कल्प वृक्ष में धर्म के बारे में होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, सो मच कनेक्टेड। तो हम देखें, ये एक चित्र बनाया है, बाद में मैं आपको ओरिजिनल चित्र दिखाऊंगी जो हमारे फाउंडर के समय पे साक्षात्कार से विजन से बना था, कल्प वृक्ष का चित्र। तो इसमें ये चारों पीरियड को वृक्ष के रूप में दिखाया है। एक पीरियड होता है बीज और मूल का, ठीक है, बीज और मूल रूट्स, वो एक झाड़ का पीरियड है। सेकेंड पीरियड है जब उसका जो थड है, ट्रंक है, वो बढ़ रहा है, बराबर है। फिर थर्ड पीरियड है जब मेन ब्रांचेस उसकी शुरू होती है, मेन डालियां, जो मुख्य डालियां शुरू होती है, वो उसका थर्ड पीरियड है। और फोर्थ पीरियड कौन सा है, जब एक एक डालियों में से अनेक छोटी 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 टाल टालियां बन जाती है। जब तक थर्ड स्टेज होता है, झाड़ पे फल भी बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, हमने सब फ्रूट्स एंजॉय कर भी लिए हैं, लेकिन अब झाड़ का टाइम ऐसा आया है कि अब फ्रूट नहीं आ रहे हैं। हम कितनी भी मेहनत करते हैं ना, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फ्रूट। हमने कितनी मेहनत की, उसके सामने देखो मुझे क्या मिल रहा है। माना कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सेटिस्फाइड हो, सचमुच संतुष्ट हो। अगर उनके पास ज्यादा है ना, तो संतुष्टता की जगह उनमें अहंकार आ जाता है, उनका शो बहुत होता है। तो उसको तो हम रियल कंटेंटमेंट तो नहीं बोलेंगे ना। दूसरे देख के उनको, उनके लिए देख करके व्यक्ति सोचता, अरे ये हमारे लिए कुछ कर देता तो कितना अच्छा होता, हमारा भी लाइफ सुधर जाता। अगर अमीर व्यक्ति को देखकर व्यक्ति को ऐसा विचार आता है तो इज इट राइट? नहीं। तो इसीलिए हम ऐसे समय पर अभी झाड़ में है जहां बहुत कुछ एक्सपेंशन हो गया है, बहुत बहुत पत्ते हैं पूरे झाड़ में, लेकिन एक भी पत्ता ये नहीं कह पा रहा है आई एम कंप्लीटली नॉट ओनली ओके बट परफेक्ट, नहीं कह पा रहा है। कोई साधु संत से भी पूछ लो, कोई नहीं कहेगा। इसका मतलब कि हम कल्प वृक्ष के आयन पीरियड में है। देख लो अपने आप को कि आप कौन सी डाली पे हो, कौन सी टाल टाली पे हो, क्या पकड़ के रखा है आपने, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करो। आप अभी कौन सी टाल टाली पे हो, कौन सा आपने पकड़ के रखा है, बिलीफ सिस्टम, मान्यता कहो, धार्मिक रीति से आपने क्या मन में पकड़ा है, क्या करते हो रोज के रोज, 10 देवताओं की पूजा करते हो या क्राइस्ट को मानते हो या क्राइस्ट और प्रीस्ट को भी मानते हो या कोई शंकराचार्य को मानते हैं तो आजकल के साधु संतों को मानते हैं, देखिए आप किधर हो। कोई नास्तिक भी होगा जिसको इसमें से अब कुछ नहीं चाहिए, इनफ इज इनफ, मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, ऐसे भी होंगे कोई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा इस झाड़ से गुजरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर उसके जर्नी में ऐसे अनुभव आए होंगे जो आज की डेट में वो नास्तिक कहलाता है। लेकिन नास्तिक वालों के इसमें भी अनुभव में देखा है कि वो एक सेकंड आती है जब नास्तिक वाला भी कहता है अगर तू है ना तो दिखा दे, यहां इसमें से मुझे निकाल दे। व्हेन ही इज टू फ्रस्ट्रेटेड तब ऐसे बोलता है, भले तू जो भी है मुझे नहीं पता। उसके मन में भी वो भाव आता है, दैट मीन्स टू बी इन रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, नॉट नेसेसरी कि धार्मिक ही होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। एक नॉन बिलीवर भी एक समय पर उसे याद करता है, क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ कनेक्शन। हर एक आत्मा का जो कनेक्शन है परमात्मा से, उस कनेक्शन से उसे याद करता है। तो आज आप देखिए आवाज सुनाई देती है, दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनाई देती है? वो क्या पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? दे आर स्क्रीमिंग आउट। उनको क्या चाहिए सोचो। मेजॉरिटी शांति चाहते हैं, मेजॉरिटी मतलब सब कुछ दुनिया में अवेलेबल, साइंस की इतनी डेवलपमेंट, हमें सब कुछ प्रदान करने की उसकी शक्ति, लेकिन आत्मा चिल्ला रही है अंदर से। आत्मा फील करती है मेरे बहुत बंधन है, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अशांति है, मैं बहुत अकेली हूं इस महल में। लेडी डायना का एग्जाम्पल है, पूरे महल में उसको क्या नहीं मिलता था, पर लास्ट में उसने अपने अनुभव में सुनाया, आई एम वेरी सैड, मुझे तो पूरा बंधन लगता है यहां, मुझे यहां नहीं रहना है। ये उसके अनुभव थे। तो इसीलिए ये जो पीरियड अभी कल्पवृक्ष में चल रहा है ना, ये वो पीरियड है जिसमें सारा कल्पवृक्ष फुल रीति से बढ़ चुका है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि सोचती है अभी तो क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया। भारत तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी तो उसको और एकदम डेवलप्ड होना है। और यहां डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोल रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। मतलब हर चीज की एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक लेवल होता है, वो वहां तक ही जाकर के फिर उसका ड्रॉप शुरू होता है। हर एक की लाइफ में भी ऐसा होगा। तो अभी कल्पवृक्ष के समय क्या है, एक्सट्रीम तक पहुंचकर, भाई चांद पे भी प्लॉट ले लो, अभी भी आपको जो करना है कर लो, पर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की लेवल आ चुकी है। और इसीलिए हम एक ड्रॉप देखने वाले हैं, और वो ड्रॉप केवल मुझे, केवल इनको, ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा था लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये सबके लिए होगा, सबके लिए, पूरे पूरे देश, पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में होगा, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं, हम सब उस तरफ जा रहे हैं। तो भले भरपूर है झाड़, फलदायी नहीं है, नो फ्लावर्स नो फ्रूट, सब चमक रहा है लेकिन नजदीक जाके देखो तो, आपने बहुत बार अनुभव किया होगा, आप विंडो शॉपिंग करते, मना दिखने जाते, आपको इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी नजर आती है, और जब आपको शॉपिंग करने जानी होती है ना, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। दिस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। दुनिया की हालत वही है। इसका मतलब हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, पर एक स्टेज आता है, हर एक के जीवन में भी आता है, तो ये ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में भी आता है। इसका मतलब ये नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो और अभी करना है, लेकिन जो करना है वो करना है जो अभी तक नहीं किया है। जब तक हम न्यू थिंकिंग में नहीं आएंगे, हम ओल्ड थिंकिंग में रह के झाड़ क्या होगा बताओ, थोड़े समय के बाद ये झाड़ का क्या होगा, जब उसमें फ्रूट भी नहीं है, फल भी नहीं है, क्या होगा? धीरे धीरे गिरना होगा ना उसको। वो गिरे उसके पहले हमें नए शूट की, नए क्या कहते हैं उसको, छोटा जो होता है ना झाड़, पौधा, नए पौधे की तैयारी करनी है। और वो किसकी तैयारी है? हमारे ही झाड़ की, किसी और का नहीं है, हमारा झाड़ है। और उसकी तैयारी कौन करेगा? नहीं नहीं, भगवान को करने दो बाबा, छोड़ो उसको, करने दो जो करना है, हमारे क्या है, मैंने थोड़ी कोई पाप किया है, मैंने थोड़ी किसी को दुख दिया है, भगवान जाने, उसका काम जाने। ऐसा नहीं होता है, भगवान भी अकेले नहीं करेगा, क्योंकि हम रहते हैं इस झाड़ में। भगवान तो बीज है, बीज के अंदर सारे झाड़ की नॉलेज है, उसको मालूम है आज क्या है कल क्या है, पर वो कोई ज्योतिष थोड़ी है जो हमको एक एक बात बताएगा। वो नॉलेजफुल है, परमात्मा नॉलेजफुल है। आप शांति से, धीरज से बैठेंगे तो आपको एक एक बात की नॉलेज मिलेगी, और हमारे पास बुद्धि है नॉलेज को समझने के लिए। अगर मुझे समझना है तो बुद्धि दी हुई है ऑलरेडी, तो हमें उस बुद्धि का उपयोग इस रीति से करना होगा कि पुराने झाड़ के गिरने से पहले हम नए झाड़ की तैयारी शुरू कर दे। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने में भगवान तो खड़े थे, लेकिन साथ में सभी गांव वाले भी खड़े हो गए, तो गांव वालों को भी लगा कि नहीं, हमने भी भगवान को मदद की और भगवान तो खुद कर रहा था, लेकिन हमारा भाग्य बनाने के लिए गांव वालों को साथ में ले लिया कि भाई आप भी करो तो आपका भी भाग्य बन जाए। ऐसे भगवान अभी पुकार रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो, आपको एक एक अंगुली का सहयोग देना है नए झाड़ के निर्माण के लिए। छोटी सी अंगुली, छोटी सी अंगुली माना स्व परिवर्तन। अरे छोड़ो ना, हजार लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ो मेरा बॉस ऐसा है, छोड़ो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे परमात्मा को कैसे नए झाड़ के निर्माण में मदद करना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, बस मुझे ये नहीं देखना है दूसरे तीसरे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। इसका मतलब आप वो डाल डालियों में रहते हुए आप फिर से नीचे बीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। झाड़ अभी भी खड़ा है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया कि सचमुच हम आयन पीरियड के भी एंड पर है, जब कभी भी बैंग हो सकता है कोई भी मोमेंट, तो हमको क्या करना चाहिए, अभी से इसी मोमेंट से अपना एक नया टर्न लेना चाहिए। कुछ भी आपका लॉस में जाने वाला नहीं है, लॉस में तो वैसे भी जाएगा अगर जाने वाला होगा तो। क्राइसिस तो कभी भी आ सकती है, कर्फ्यू कभी भी लग सकता है, कोरोना पैंडामिक कभी भी आ सकता है, कोई नहीं बोल सकता कुछ। पर अगर हमने अपने मन बुद्धि से डिसाइड करके किया, हम कभी लॉस में नहीं जाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि एक ही स्ट्रेंथ काम करती है, इवन विनाश में एक ही स्ट्रेंथ काम करती है, और वो है मनोबल, आत्मिक बल, बाकी कोई बल काम नहीं करता है। तो हम देखेंगे, ये है बीज के साथ कनेक्ट होना। हमने खाली नीचे का पोर्शन लिया, परमात्मा हमारे लिए उनके वायदे अनुसार जो गीता में बताया है, जब भी अधर्म का समय आता है मैं आता हूं। किस लिए आता हूं? अधर्म का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। अब यहां हम तो कोई धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं बातें कर रहे हैं। हमने ये भी नहीं बोला अच्छा हम हिंदू है, ये भी नहीं बोला, कभी बोला क्लास में बोला हम हिंदू है? नहीं। इसलिए कईयों को प्रश्न उठता है, ये ब्रह्मा कुमारी है कौन, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि जब हम शिव बाबा के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हम दैहिक धर्मों से डिटैच हो जाते हैं। फॉर्मैलिटी में लिखेंगे, जैसे मेरा जन्म जैन परिवार में है, तो जो गवर्नमेंट की फॉर्मैलिटी है उसमें मैं लिखूंगी। वो लोग तो जैन भी नहीं लिखेंगे, वो सीधा हिंदू ही लिख देंगे, वहां जैन का कोई कॉलम ही नहीं, समझा? वो फॉर्मैलिटी से है। लेकिन जब हम ये सत्य को समझने लगते हैं कि मैं पुराने झाड़ के और नए जो झाड़ आने वाला है उसके फाउंडेशन में अभी बैठा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने अपने को आत्मा रियलाइज किया है और अब मैं शिव बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में हूं, भले दैहिक रूप से मेरा जो भी धर्म है। नाउ सोल टू सुप्रीम सोल कनेक्शन में हो आप, तो कौन सा धर्म होगा हमारा? है धर्म, लेकिन वो धर्म जो आत्मा के साथ कनेक्टेड है, जिसको अर्जुन के लिए कहा स्वधर्म में टिको। अगर हमें ये विनाश का पूरा सामना करना है ना, तो हमको स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना होगा। तब हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स, हमारे ब्लड रिलेशन वाले, उनके डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है, तो मेरे में वो दम है, कि मैं उधर का उधर हार्ट फेल मेरा हो जाएगा, ऐसे सीन होने वाले हैं जैसे पाकिस्तान अरे भारत के पार्टीशन में हुआ। किसको पता था पूरी ट्रेन डेड बॉडीज में होगी, कैसे सामना किया होगा वो सीन। उसी से तो रिवेंजफुल एटीट्यूड ही पैदा हुआ, सबके अंदर बदले की भावना बहुत बढ़ गई थी। तो वो तो आयन पीरियड में तो ऐसा ही होगा ना, थोड़ी कोई अच्छी बात निकलेगी उसमें से। तो या तो आप बदले की भावना में बढ़ते जाओ और हर एक के सामना करते जाओ, या तो आप अपने स्वधर्म में टिको। स्वधर्म कौन सा है आत्मा का? शांति और शुद्धता। आई एम अ पीसफुल एंड प्योर सोल, लिख लो चाहिए तो। ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है, जहां से मैंने परम धाम से शुरू किया था, तब मैं उसी धर्म में स्थित था, शांति और शुद्धता। हम कहते हैं पवित्रता और शांति। एक सेकेंड के लिए अपने को कहो, मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति पवित्रता। अब देखो, सीता किसके साथ थी वन में? राम के साथ थी। एक घड़ी आई, क्यों उसने राम का साथ छोड़ दिया? क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा का मान नहीं रखा। हमारे अंदर बुराइयां कैसे आई, रावण रूपी बुराइयां? जब हमने अपनी मर्यादा की लाइन क्रॉस की। स्वधर्म में थे तब तक नो रावण, नो विकार। जैसे वो स्वधर्म से पर धर्म में आ गए, शांति पवित्रता को यूज ही नहीं करना भूल गए। उसको कहां यूज किया? फिर मंदिरों में बस, बाकी गृहस्थ में नहीं, डे टू डे एक्टिविटी में नहीं। दैट मीन्स हम अपना स्वधर्म भूल गए, तब जाके हमारे अंदर बुराइयां आई। सोचना इसके ऊपर, बुराइयां मेरे नेबर से नहीं आई, मेरे फादर से नहीं आई, मेरे चैलेंजेस से नहीं आई। वो तब आई जब मैं आत्मा अपने स्वधर्म की रेखा को पार कर दिया। सीता को क्या चाहिए था? एक तो वो सुनहरा हरण, अभी सीता होके अभी सुनहरा हरण क्यों चाहिए आपको भाई? सीता माना यू हैव एवरीथिंग ना, पर ऐसे आता है। पहली चीज जो हमारे अंदर बुराइयां लाना शुरू करती है वो है स्वधर्म को छोड़ इच्छाओं के पीछे जाना, इच्छाओं को जागृत करना। दैट इज वेयर वी लूज आर पीस फर्स्ट टाइम, पता नहीं चलता है। तो हम अभी कहां है? फाउंडेशन में है। क्या याद रहेगा आपको? अभी हम लास्ट आयन पीरियड नहीं याद करो, अभी हम फाउंडेशन में है। क्यों है? परमात्मा के साथ नए झाड़ का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए। और यहां हमें कौन से धर्म की प्रैक्टिस करनी है? स्वधर्म की। मॉर्निंग उठ करके हमेशा ये कॉन्शियस रहे कि मैं अपने स्वधर्म में स्थित होकर ये एक्टिविटी करूंगा, मैं अपने स्वधर्म में स्थित होकर के ये चैलेंज फेस करूंगा, ये परिस्थिति क्रॉस करूंगा। बीमारी भी आए, मैं अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपनी बीमारी को एड्रेस करूंगा। प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। तो इसमें दिखाया है कोई अकेला नहीं है, धीरे धीरे संगठन बढ़ता जा रहा है। हर प्रकार का मना, पुरुष भी है, स्त्री भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सब प्रकार के लोग, सब धर्म के लोग, भले जे जो 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 डाल डाली में है, टाल ताली में है, जैसे उसको फील हुआ कि हाँ अभी का समय ऐसा है, मुझे शिव बाबा के साथ कनेक्ट होना है, तो वो सीधा जहां भी है वहां से बीज के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देता है। अब क्या होगा इससे? जब आप बीज के साथ होंगे, आप उनके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, किसके लिए? पूरे झाड़ के लिए। तो जैसे आप पानी दे रहे हैं झाड़ को, समझा? तो ये वाइब्रेशन सारे पुराने झाड़ में एक एक पत्ते तक जाता है। तो करना है ये अपने घर बैठ के अपने स्वधर्म से इस कल्प वृक्ष के जितनी भी आत्माएं हैं, भले वो अपने कॉपर पीरियड में हो कि आयन पीरियड में हो, हर एक को हम जो थॉट कर रहे हैं मेडिटेशन का, उसका वाइब्रेशन पूरे झाड़ में जाए। ये एक बहुत सुंदर मेडिटेशन है। सारे आपके प्रकंपन पूरी ह्यूमैनिटी तक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, लेकिन ये सेवा तब होगी जब आप उसमें डिटर्मिनेशन डालेंगे, दृढ़ता डालेंगे। तपस्या किसको कहा जाता है? जो कार्य दृढ़ता से किया जाता है। कहते ना, प्राण जाए पर वो दृढ़ता, उससे जब हम करते हैं तो तब वो तपस्या कहलाती है। भले आप खाली झाड़ू मार रहे हैं, लेकिन वो तपस्या हो गई। भले आप अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, पर वो आपकी तपस्या होगी। हर कर्म आपकी तपस्या में बदल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की दृढ़ता बढ़ती जा रही है। और क्यों इसकी गारंटी है? क्योंकि बीज साथ में है। बीज हमको कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहा है। तो मैं क्यों कहूंगी कि अरे एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, बैठ जाओ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में, एनर्जी भर दो बाबा से, फिर शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और जब आपकी तपस्या है तो कई चीजें छूट भी जाएगी ना, आपको मिस ही नहीं होगी। और कौन सी बातें छूट जाएगी? जो आपकी तपस्या में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वो ही बातें, वो ही आदतें आप पे ही छूट जाएगी। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है कि आपको लगता है, अच्छा सिगरेट आज से मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही है, मैं आजकल टेंशन में नहीं आ रहा हूं, तो मैं सिगरेट क्यों पीऊं? ऑटोमेटिकली आएगा। आपको कोई नहीं बोलेगा अच्छा चलो आज से सिगरेट बंद, आज से नॉनवेज बंद, बिल्कुल नहीं। जो चीज आपको बीच में आएगी उसको आप पे ही छोड़ देंगे, बिकॉज आप अपनी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते हैं। तो हम तपस्वी बन सकते हैं सभी, घर गृहस्थ में रहते हुए हमको कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बाबा हमको तपस्वी बनाता है, राजयोगी, और उससे फिर सेवा ऑटोमेटिकली होती है, अपने एक्शन से, अपने रिलेशन से, अपनी धारणाओं से। तो कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं शिव बाबा? त्याग, तपस्या और सेवा। ये तीन मेथड से वो नए फाउंडेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं। बहुत अच्छा स्ट्रांग फाउंडेशन बन रहा है, इतना स्ट्रांग कि हमें परमात्मा अपने साथ परमधाम लेके जाते हैं। हमारे लिए परमधाम के दरवाजे खुल जाते हैं। जो इतने युगों से सब चाहते हैं कि हम मोक्ष में जाएं, मुक्ति में जाएं, ये करे वो करे, वो टाइम आता है हम सबको बाबा परमधाम लेके जाते हैं। और जिन्होंने भी ये फाउंडेशन के लिए पूरी परमात्मा को मदद की है अपना जीवन परिवर्तन द्वारा, वो तो परमधाम में बाबा के एकदम नजदीक होगा, वेरी क्लोज। अट्रैक्ट करेगा ना, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। जितनी उस सुई पे कट नहीं होगी, उतना वो अट्रैक्ट करेगा अपने पास। सो पूछो अपने आप से, मैं परमधाम में शिव बाबा के नजदीक नहीं बैठना चाहता हूं? और जितना आप नजदीक होंगे बाबा के, उतना आप जल्दी से नए झाड़ में स्टार्टिंग में ही आने का लाभ पाएंगे। और आपने झाड़ देखा होगा, जब नया झाड़ धरती से ऊपर आता है हमको कितनी खुशी होती है, कितनी मेहनत की होती है ना, वो बीज को पूरा खाद दे करके, पानी दे करके, जब पहला शूट बाहर निकलता है, यू एक्चुअली वांट टू कॉल पीपल एंड से कि मेरे यहां ना नया शूट निकला है, अभी नया निकला है, इतने समय के बाद, मेहनत के बाद निकला है। तो जो शूट निकलता है उसमें दो पत्ते होते हैं ना, दो कोमल पत्ते होते हैं, फर्स्ट टू लीव्स। तो आपको पता है ये कल्प वृक्ष के नया झाड़ जो निर्माण होगा उसके वो दो कोमल पत्ते कौन होंगे? कौन गेस कर सकता है? वो टू परफेक्ट सोल्स। अभी है ना, ये शॉकिंग न्यूज है इसके बाद का। ये दो पत्ते कौन होते? बाबा कभी नहीं आएगा सृष्टि पर, बाबा का रोल अलग ही है। ब्रह्मा बाबा भी नहीं आएंगे। ब्रह्मा बाबा कैसे आएंगे? हाँ, पहली दो आत्माएं हैं श्री कृष्ण और श्री राधे, नॉट श्रीमती, श्री राधे, क्योंकि श्री का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। दो आत्माएं जिनको बाबा ने तैयार किया, शिव बाबा ने तैयार किया इस त्याग तपस्या सेवा की विधि द्वारा, जिसने कूट कूट के तपस्या की, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, वो सबसे पहले कृष्ण, श्री कृष्ण और श्री राधे अपने अपने परिवार में जन्म लेंगे। अब वो अलग बात है कि उनका परिवार कौन होगा, उनके मां बाप कौन होंगे, वो फिर थोड़ा एडवांस कोर्स की बात है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को थोड़ी हम याद करेंगे, वो आत्मा, दो आत्माएं जो परफेक्ट फॉर्म में जन्म लेंगी वो श्री कृष्ण और श्री राधा। और वही श्री कृष्ण और श्री राधा जब बड़े होते हैं तो एक ही दिन पे उनका स्वयंवर होता है। और ये कस्टम भारत में शुरू से है, क्योंकि कृष्ण और राधे कौन सी धरती पर जन्म लेंगे? यूएसए, ये तो वेल नोन फैक्ट है ना। तो भारत भूमि पर श्री कृष्ण और श्री राधे वो पहले प्योर सोल गिनती में हो आएंगे। और जब उनका जैसे यंग होंगे वो लोग, तो तभी उनका एक डेट पर स्वयंवर होगा और कस्टम के अनुसार श्री राधे का नाम होगा श्री लक्ष्मी और श्री कृष्ण का नाम होगा श्री नारायण। इसीलिए एक श्लोक है जिसमें कृष्ण नारायण सबको एक कर एक ही श्लोक में दिखाते हैं, क्योंकि वही आत्मा केवल नाम बदलता है बड़े होने पर। और उसी दिन स्वयंवर के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के नंबर वन वर्ल्ड एम्परर, वर्ल्ड एम्प्रेस, माना पूरे भूमि के महाराजा और महारानी के रूप में उनका राज्य अभिषेक होगा। और हमारी भारत भूमि पर पहले दिन से, कल्पवृक्ष की पहले दिन की शुरुआत से राज्य चलाया है। इट हैज बीन अ लैंड ऑफ किंगडम्स। लेकिन वो जो गोल्डन पीरियड है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है, एक किंगडम होता है तो दूसरा भी किंगडम होता है, फिर झगड़ा करेंगे आपस में, दो मत भी नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी आत्माएं गोल्डन पीरियड में आएगी किसी में ये संस्कार है ही नहीं। और सारे इतने अपने परफेक्शन पे है कि उनको हरेक को अपने जीवन में संपन्नता महसूस हो रही है। देन व्हाई एनीबडी विल बी जेलस ऑफ समबडी एल्स? क्यों किसी की चीज लेने खड़पने का संकल्प किसी को भी आएगा? तो वो जो पीरियड है, सॉरी, ये है सतयुग की निशानी दिखाई है। 8 जन्म होगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के, 8 राज्य, एडवर्ड दी वन, एडवर्ड दी टू, ऐसे होता है ना, ऐसे लक्ष्मी नारायण दी वन, लक्ष्मी नारायण द टू, ऐसे 8 राज्य होंगे। लेडीज को कहा जाएगा देवी, जेंट्स को कहा जाएगा देव। अभी भी कई लोग लेक्चर करते हैं तो एड्रेसिंग में देवियों और सज्जनों, अभी देव निकल गया, सज्जनों आ गया, वो भी बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत रेयरली। लेकिन वास्तव में ऐसा एड्रेस किया जाता था भारत में। तो बिगिनिंग में हर एक देवी होती है और हर एक देवता होते हैं। ये शब्द भारत का है, इंग्लिश में उन्होंने नाम दे दिया गॉड्स एंड गॉडेसेस, गॉड नहीं, गॉड्स एंड गॉडेसेस, बिकॉज बाद में इन्हीं की पूजा होने लगी मंदिर में। तो जब उनकी पूजा होने लगती है मंदिर में, वो वर्दी ऑफ वर्शिप हो जाते हैं, तो फिर उनको ही गॉड्स एंड गॉडेसेस कहने लगे फॉरेनर्स। हम कहते हैं देवी देवता। तो कौन सा कल्चर हुआ भारत में सबसे पहले? अभी भी कोई लोग कहते हैं, अरे भारत, आप जो हिंदू होते हैं ना उनके लिए कहते हैं, अरे ये तो सनाती धर्म के है, सनातन धर्म। सुना है ऐसा, सनातन धर्म भारत का? खाली सनातन बोलते हैं, सनातन मीन्स द ओल्डेस्ट, पर ये तो बोलते ही नहीं है आदि सनातन, देवी और देवताओं का धर्म, जिसमें कोई रिचुअल नहीं होता है, कोई मंदिर नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है, कोई पूजा पाठ नहीं होती है, जीवन ही हरेक का देवी और देवता, रॉयल कैरेक्टर, एकदम हाईएस्ट प्योर, सारे गुण सारी शक्तियां भरपूर। और आप देखेंगे जैसे झाड़ का थड एक होता है ना, ऐसे ही जो धर्म भी है ना, ये दोनों जगह त्रेता युग और सतयुग एक ही कहलाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दो युगों तक चलता है भारत में, उसकी कोई बुक नहीं मिलेगी आपको, उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उस समय लिखते नहीं थे ना, दे वर लिविंग इट, कोई लिखता नहीं था, टोटली लिविंग में था। अभी लिविंग जो है वो तो आपको कुछ शब्दों में यहां वहां मिलेगा, कोई पूरी थोड़ी मिलेगी बात, पर ये तो शिव बाबा ने नॉलेज दिया साक्षात्कार द्वारा, बताया कि ऐसा समाज था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना किसने की? खुद शिव बाबा ने, और अभी कर रहे हैं। भले हम अभी देवी देवता नहीं है, पर अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर हो रहा है ना, वो फुल ट्रांसफॉर्मेशन हमें फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। ये जो स्टडी है ना, ये अभी की दुनिया के लिए नहीं है, ये भविष्य नई दुनिया के लिए है। अभी आप कितना भी कर लो, पर आयन पीरियड में क्या होगा? रस्ट तो आएगा ही आएगा, पर करते रहो, करना भी जरूरी है। कुछ किए बिना बैठ जाएंगे तो एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे, वातावरण ही इतना खराब है, इसे करना तो पड़ेगा अपना कर्म, लेकिन मन और बुद्धि को प्रिपेयर करो नई व्यवस्था के लिए, कि अभी ये फ्यूचर है। केवल परमधाम मोक्ष फ्यूचर नहीं है, परमधाम जाकर के फिर से हमको कर्म भूमि पर नई रीति से आना है, नए कल्प वृक्ष में। तो इसीलिए जब ये आठ राज्य श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के जब पूरे होते हैं, तो नौवा जो राज्य है वो श्री राम और श्री सीता का होता है। हरेक आत्मा की यहां के पुरुषार्थ के आधार पर है, ऐसा नहीं भगवान चाहता है कि ये पहले आवे, भगवान चाहता है कि ये बाद में आवे, बिल्कुल नहीं। सबसे अनबायस्ड अगर कोई है तो वो शिव बाबा है। अपने पुरुषार्थ के आधार पर ही हम अपने नंबर लेते हैं, उस अनुसार फिर 12 राज्य श्री राम श्री सीता के चलेंगे, 12 राज्य। लेकिन जरा भी दो ओपिनियन नहीं, बोलो, जरा भी दो ओपिनियन नहीं। और पहला जन्म 9 लाख आत्माएं, द फर्स्ट बर्थ। जब वो 8 बर्थ पूरे होंगे तब तक 2 करोड़ होंगे पूरे विश्व में, एक लैंड, एक ही भूमि, एक ही भाषा, एक ही धर्म, कोई द्वैत नहीं। इसलिए एक शब्द यूज करते हैं ना, अद्वैत। तब सचमुच अद्वैत जीवन था हमारा, कोई द्वैत नहीं, कोई दो ओपिनियन नहीं। माना आपको मीटिंग आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं करनी पड़ेगी, मीटिंग होगी खुशहाली, बस अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे ना सबको, मीटिंग भी एंजॉयबल होगी, हर एक स्वरूप अलग होगा। तो ये 9 जो 12 राज्य है, 12 जन्म जो है त्रेता युग के, 12 राज्य होंगे राम और सीता के। उसमें कोई रावण नहीं आएगा, कृष्ण और नारायण के राज्य में कोई कंस नहीं आएगा। एवरीबॉडी, एवरी सोल इज हैप्पी, कंटेंटेड। तो हम ये भूल जाए कि हम कोई बंदर से बने हैं, बिल्कुल भूल जाए। हम अभी जो है ना कैरेक्टर वाइज बिहेवियर वाइज बंदर से भी बदतर हो गए हैं। अब हमको इस स्टेज से उठ करके अपने बेस्ट पर पहुंचना है। ये टाइम है, ये अगर हमने चूक की तो सचमुच ये मौका हमको नहीं मिलेगा जिस पर जहां पर हम अपने बेस्ट को ला सकते हैं। तो बेस्ट कहां हम देखेंगे? सतयुग में, त्रेता युग में। कोई भी ऐसा नहीं, अच्छा खाली ब्रह्मा कुमारी आएंगे सतयुग त्रेता में। अरे कौन ब्रह्मा कुमारी के रूप से जन्म लिया है बताओ? किसने भी लिया है जन्म ब्रह्मा कुमारी रूप से? नहीं, हरेक ने इस बात को समझ के अपने जीवन को चेंज किया तो एक टाइटल मिल गया, क्योंकि यू आर फॉलोइंग दिस, यू आर ट्राइंग टू डू दिस, चलो आप ये सब प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे, चलो आप ब्रह्मा कुमारी। कोई जन्म से नहीं बने हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के सारे कॉन्शियसनेस है। नहीं भी आप लगाएंगे अपने ऊपर ये टाइटल तो कोई हर्जा नहीं, पर बात को समझो खाली कि मुझे अब इस जीवन में क्या करना है। जो भी समय बाकी है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 30 साल, इन इतने समय के लिए मुझे अपने लिए, सारे विश्व के लिए क्या करना है, और आप वो चीज आपके कर्मों द्वारा, आपके प्रोजेक्ट्स द्वारा, आपके बिजनेस द्वारा भी आप कर पाएंगे। इतने आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप दृढ़ता से करें तो। अच्छा अब क्या होगा? ये तो द्वैत, एकदम अद्वैत धर्म के हिसाब से चले सब। कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ी कि अच्छा इस धर्म में मैं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोई रिचुअल्स, कुछ भी नहीं। आप बॉर्न ही उस रीति से होंगे, नेचुरल लिविंग। इतना रिच हेरिटेज किसका है? कौन सी भूमि का? भारत भूमि, रिचेस्ट हेरिटेज। वो तो अभी इतना है भी नहीं, और उसके बाद जो राजाएं बने उन्होंने भी इतना सारा मंदिरों में बंद करके रख दिया। जो अभी बातें चल रही है कि भाई ताले खोलेंगे तो आपको बहुत सारा खजाना मंदिरों में मिलेगा, पर वो किस राजाओं ने रखा? इन्होंने नहीं, उसके बाद जो राजाएं आए जिनके लाइफ में ये सारे प्रिंसिपल्स नहीं थे, वो चीज बदल गई। खाली राजा ही चलती गई भारत में। तो अब हम देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ा। अब टाइम आया एट द एंड ऑफ त्रेता युग कि अभी एक्सपेंशन होगा झाड़ का, क्योंकि और भी आत्माएं परमधाम से आएगी। लेकिन ये जो हिस्ट्री है ना सतयुग की और त्रेता युग की, वो फिनिश हो गई। और पहली बार ये सारे जो सोल कॉन्शियस थे, आत्मस्वरूप में अपना रोल बजा रहे थे, पहली बार देह के भान में आए। क्यों देह के भान में आए? आत्मा की एनर्जी कम हो गई प्ले करते करते करते, और जैसे देह के भान में आए उनकी सारी धारणाएं बदलने लगी। जो क्रिश्चियनिटी में बताते हैं कि जो एप्पल फल नहीं खाना था उसने वो खा लिया, उसे काफी समय तक एप्पल को टच नहीं किया, लेकिन जिस दिन एप्पल को टच किया खत्म हो गई उनकी वो जिंदगी। तो जब ये देवी देवता आत्माएं जब अपने इतनी रिच हेरिटेज को कट करने लगते हैं, तब क्या होता है? प्रकृति का प्रकोप होता है, इवन प्रकृति रिएक्ट्स टू इट। और प्रकृति का बहुत बड़ा प्रकोप होता है, उसमें ये सारा जो हिस्ट्री है ना लगभग खत्म हो जाती है, सारी ज्योग्राफी भी चेंज हो जाती है, सारे खंड शुरू हो जाते हैं बनने के लिए, ड्रिफ्टिंग हो जाता है सारा, और नए नए खंड शुरू हो जाते हैं, आइलैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और भारत में हिस्ट्री अभी भी है, लेकिन संसार को बहुत समय के बाद पता चली, जब वास्को दी गामा और वो दूसरे भाई जो पूरा चक्कर मारा वर्ल्ड का, उन्होंने फिर वापस भारत को ढूंढा, और भारत पे तो फिर भी चल रहा था राज्य, लेकिन भारत कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो अपने जीवन में मस्त थे और पूरी रिचेस के साथ भी, ऐसे कोई गरीब लोग नहीं थे भारत में। जब पहली बार जब कोलंबस कोलंबस जब पहली बार भारत के एक कोने पे पहुंचे तो वहां पर जो आए उनको वेलकम करने के लिए पूरा ऊपर से नीचे तक जेवर से थे, जेवर पहने हुए थे, एकदम रिच, रियल गोल्ड, डायमंड, पर्ल्स। तब भी उनको लगा अरे इस भूमि पे तो बहुत खजाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, वास्को दी गामा। तब उसने देखा कि अरे ये लोग देखो ना अभी ऐसे ही आए हैं किनारे पर, हम जैसे हमको वेलकम करने के लिए, और इतने रिच है सब। तब उनको पता चला इस भूमि पे बहुत है। तब से लेकर के फिर बाहर वालों ने निगाह जो है भारत भूमि पर रखनी शुरू कर दी, भले थोड़े समय के बाद, तुरंत नहीं। तो भारत में फिर क्या हुआ, कुछ आत्माएं तो टापुओं पे चली गई है डिस्ट्रक्शन के कारण, और टापुओं पर से उनका जीवन शुरू हो गया। तो टापू पे जो भी मिलेगा उसी से करना पड़ेगा। और फिर उनकी पीढ़ियों को याद ही नहीं रहा कि भाई हमारे दादा तो ऐसे थे, दादा के दादा ऐसे थे, उनको यही लगा कि हमारी पीढ़ी तो ऐसे ही चली है गुफाओं में से, टापुओं में से रहते हुए। उनके पास ये हिस्ट्री है ही नहीं, हम सब भूल जाते हैं। और भारत में क्या चलता है, भारत के जो लोग थे जो देवी देवता के ही स्टेटस से कंटिन्यू करते हैं, वो फिर अपने को देवी देवता समझना मना नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो आगे होकर के गए सतयुग में त्रेता में, उनको अपने एंसेस्टर, उनको अपने पूर्वज समझ के अपने अपने महलों में उनके मंदिर बना दिए। और उस दिन से श्री कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, इन सब के जो जोड़े थे, कपल्स थे, उनके पहले पहले मंदिर बने महलों में। और परमात्मा का भी जिसको भी उस समय साक्षात्कार हुआ होगा, क्योंकि पुकारा होगा, तो उनको एक लाइट का साक्षात्कार हुआ। और फिर एक जो पहले स्टोन बनते थे ऐसे ओवल शेप के, वो स्टोन का की पूजा शिवलिंग के रूप में शुरू हो गई, जिसमें कोई बॉडी का आकार नहीं था। तब शंकर जी का भी नहीं बनाते थे, ओनली शिव, जैसे अपना सोमनाथ का मंदिर है, ये सब जो पहले पहले बने। राजाओं ने ही बनाए, राजाओं ने ही ये सब प्रथा शुरू की। फिर बाद में उनके पास राज ऋषि वगैरह की कस्टम चली, पहले तो खुद राजाएं ही अपने मन से करते थे। तो मंदिर शुरू होने से क्या हो जाता है, कौन सी प्रथा शुरू हो जाती है, भक्ति, भक्ति की प्रथा शुरू होती। और पता है तभी भी भारत में कोई धर्म की बात नहीं करता था, हमारे जो बड़े थे जो ऋषि मुनि हुए बाद में, एक स्टेज के बाद ऋषि मुनि वगैरह हुए, उन्होंने क्या बनाया मालूम है, उन्होंने कास्टिज्म बनाया कि भाई कैसे वेद द्वारा हम कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो ये सब ये ब्राह्मण कहलाएगा, ये क्षत्रिय कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये ऐसे अलग अलग बने, ये शूद्र कहलाएगा, ये सफाई का काम करेगा। धीरे धीरे हम कास्टिज्म में ज्यादा गए। पता है हमको ये भी नहीं पता था हम हिंदू है, कोई बात ही नहीं करता था हिंदुइज्म की, क्योंकि वैसे कोई वो धर्म था ही नहीं ना जो हम तो जीवन में प्रैक्टिस कर रहे थे। भारत भूमि का तो यही तो डिफरेंस है, हम तो जीवन में प्रैक्टिस कर रहे थे। बाकी खंड की जो हिस्ट्री है वो तो बाद में आई है, सबके लिखत में है कौन से कंट्री की कौन सी ये हुई है, सबकी लिखत है, भारत की नहीं है। तो हिंदुइज्म किसने बोला, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये इज्म है ना, बहुत बाद में आए। उसके पहले आए दूसरे प्रकार के धर्म, जैसे इस्लाम, जैसे आदि शंकराचार्य सन्यास का, जैसे क्रिश्चियनिटी भी बहुत बाद में आया। लेकिन हर एक धर्म यही कहेगा कि मैं ही पहले आया, एवरीबडी wants टू विन द रेस। पर एक्चुअली हर एक धर्म अपने टाइम पर अपने नेसेसिटी के अनुसार आया। तो मुख्य काफी धर्म है, बाकी बहुत सारे धर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी धर्मों को नहीं मानते हैं, सभी को मानते, लेकिन ड्रॉइंग में तो सब नहीं दिखा पाएंगे ना। तो मुख्य कुछ ऐसे दिखा दिए हैं कि भाई जीसस क्राइस्ट अपने टाइम पर किया, बुद्ध ने अपने टाइम पर किया, उसमें से फिर और जैनिज्म ये सब भी निकला, और बाहर के लोग जब आने लगे उन्होंने हमें नाम दिया हिंदू, सिंधु नदी के पास रहने वाले। जी किसका? हाँ, चार वेद और ये ऋषि मुनियों ने एक समाज की कैसे घड़ा जाए समाज आगे का। भारत में डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना किसी को। अब जो राजाएं थे वो तो अलग अलग अपनी राजाई करने लगे, तो कौन डायरेक्शन देगा कि ये भारत का समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने वेद वगैरह लिखे जिसमें पूरी स्ट्रक्चर क्या होगा समाज का, कैसे समाज आगे चलेगा, ये सब वेद में, रिलेशनशिप क्या होते हैं, शादी कब करनी है, व्हाटएवर, आगे 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 ये सब वेदों ने बताया। हिंदुइज्म नाम नहीं था तब, नहीं था, कोई धर्म था ही नहीं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के रूप से हम जी रहे थे, बस वो जीने का तरीका बदल गया था, पर कोई धर्म का टाइटल भारत में नहीं था। ये बहुत बाद में जब फॉरेनर्स आने लगे और उन्होंने कहा कि ये लोग कौन है, तो जैसे हम कहते हैं ना नेपाल में रहने वाले नेपाली, फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच, ऐसे हम बोलते हैं ना, ऐसे सिंधु नदी के पार रहने वाले हिंदू। अरे हिंदुस्तान हम थोड़ी बोलेंगे, बताइए आप, हम क्यों हिंदुस्तान नाम बोलेंगे? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे नाम लगते हैं आपको? जरा भी नहीं। तो ऐसे हिंदुस्तान हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम क्या है? हम कौन है? भारतवासी। हम भारतवासी है, भारत भूमि पर रहने वाले। बाद में सब धर्म की बात है, ओरिजिनली हम कौन है? भारतवासी है, समझा? लेकिन जैसे डाल डालियां बढ़ी तो हम सबकी धारणाएं, हम सबके सोचने का तरीका सब अलग 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 होने लगा। उसमें फिर बाहर वालों ने हमें भी हिंदू कहा और हमें भी बोला अच्छा हम हिंदू, क्यों आजकल भी हम ऐसा करते हैं। जब ब्रिटिशर्स आए तो स्टेशन के नाम खुद रखने लगे, हमने बोला ठीक है, एल्फिस्टन तो एल्फिस्टन। कुछ बोला हमने? हमने अपोज किया कि भाई आप एल्फिस्टन क्यों रख रहे हो, आप भारत में हो, आप भारत का नाम रखो। हम ऐसे ही थे पहले से, नहीं भले रख दो कोई बात नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है। वी डिडंट हैव कंसर्न फॉर दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, इतने डेप्थ में थे हम लोग। अरे खेती करते थे ना, वी वर सो प्राउड, हमको नहीं लगता था कि खेती कोई गरीबी की बात है। हम लोग एक कुटिया में भी रहते थे ना, कहां हम खुश थे। हमको ये नहीं लगता था कि महल माड़ी से ही व्यक्ति खुश रह सकता है, हम लोग अलग ही थे भारत के। लेकिन फिर बाद में इन्फ्लुएंस आता गया तो हम भी अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जाति के रूप से कि भाई हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। हमारा धर्म कौन सा है फिर याद करो। अगर हमको वो महसूस करना है तो हमें मंदिर चलो जाओ लेकिन बनना पड़ेगा, आप मस्जिद में जाओ लेकिन बनना पड़ेगा, तब आपके अंदर से प्रूफ आएगा कि मैं आदि सनातन देवी देवता। अगर नहीं हो आप, कोई बात नहीं, दैट मीन्स कि आपका निश्चय पक्का बैठेगा कि मैं क्रिश्चियनिटी का हूं। इस चित्र से आपको रियलाइज होगा कि नहीं मैं इसका नहीं हूं, मैं क्रिश्चियनिटी का हूं, मैं मुस्लिम धर्म का हूं, मैं बुद्धिज्म में हूं, मैं जैनिज्म में हूं, तो फिर आप उतने तक ही करेंगे। फोर्स कुछ नहीं है किसी को भी, खाली बताया जा रहा है कि सत्य क्या है, चुनना आपको ही है, आपकी ही रियलाइजेशन से होगा, कोई फोर्स से नहीं। और भगवान तो फोर्स भी नहीं करते, डायरेक्शन कहते नहीं है कि मेरा फरमान है, वो कहते हैं मैं राय दे रहा हूं, वो कहते हैं मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं, आप सोचो, आप खुद सोचो कि मैं कहां पर हूं इस कल्प वृक्ष में, और मैं जहां पर भी लगता है मेरे को मैं वहां हूं, तो आप तब तक परम धाम में रहेंगे शांति में अच्छी रीति से, और अपने उस टाइम पर आप कल्प वृक्ष में आएंगे, क्योंकि आपने खुद डिसाइड किया है कि मैं पहले जन्म वाला नहीं हूं, मैं पंद्रहवें जन्म में आऊंगा कि मैं द्वापर युग से आऊंगा, मैं पहले नहीं आऊंगा, मेरे अंदर ऐसी कुछ फीलिंग ही नहीं है। ऐसा होगा ना, कितना भी कोई पढ़ा ले सिखा ले बाय हार्ट करा ले तो थोड़ी आ जाएंगे। रियलाइजेशन करो कि मैं इस कल्प वृक्ष के कौन से भाग की आत्मा हूं, क्या मैं थर्ड की हूं, क्या मैं मेन डालियों में से हूं, क्या मैं छोटे छोटे टाल टालियों में ही रहना पसंद करता हूं। तो वो आपका डिसाइड कर देंगे, आप अभी डिसाइड करेंगे नए झाड़ के लिए और उस अनुसार ही आपका एफर्ट चलेगा। समझा? कोई फोर्स नहीं है, आपकी बुद्धि है, आपकी रियलाइजेशन है, आपका पार्ट है। एंड में जब धर्म अधर्म में बदल जाता है, माना सारे धर्म में अभी भी रीति रिवाजें चल रही है लेकिन कोई धारणा नहीं है, कोई धारणा नहीं है, जिसके लिए धर्म बना उसकी कोई चीज नहीं है, खाली रीति रिवाजें है, प्रेयर्स है, लेकिन उतना ही नहीं आपस में झगड़ते हैं। हर धर्म में दो तीन चार पार्टीज बन गई है, सब आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इसको धर्म थोड़ी बोलेंगे। काले जो श्याम कृष्ण वाले हैं वो गोरे कृष्ण वाले को नहीं मिलते हैं, कहते नहीं ये आपके होंगे, हमारे तो ये भगवान है। जगन्नाथपुरी के फॉलोअर्स अलग, श्रीनाथ जी के फॉलोअर्स अलग है, तो दोनों कृष्ण ही ना। इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है और फिर धर्म के नाम से इतने खराब काम हो रहे हैं, सब सब टूट रहा है, बिखर रहा है, तो इसको धर्म थोड़ी बोलेंगे। हम सब अभी अधर्म के पीरियड में चल रहे हैं सब, और इसीलिए अधर्म ही महाभारत युद्ध को जन्म देता है। तो आने वाला है ना महाभारत युद्ध, जिसका वर्णन है कौरव पांडवों के बीच में नहीं। कौरव वो होंगे जो सदा विकारों को ही भगवान मानते हैं, विकार के बिना ये जीवन नहीं चल सकता, माना होना ही चाहिए गुस्सा, होना ही चाहिए अहंकार, होना ही चाहिए, मैं भगवान मिले ना मिले मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, ये कौरव है। पांडव किसको बोलेंगे कि सब कुछ है या नहीं है, लेकिन वो जानता है कि सत्य की ही जीत होगी। उसको बुरे लोग ये करेंगे, अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में वो सत्य की ही जीत में मानेंगे, भूल भी करेंगे लेकिन लास्ट में सत्य की जीत होगी। वो पांडव, यादव कौन होंगे, कहते यादवों ने अपने ही कुल का विनाश किया, जिन्होंने कुल का विनाश किया माना देखो आज बड़े बड़े कंट्रीज में पूरे बॉर्डर पे सारे मिसाइल्स है, तो अगर मिसाइल्स काम में आए तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा, पहले होगा। तो वो कंट्रीज जो वेपन्स में मानते हैं और जो मानते हैं कि हमें ही अटैक करना है, भले बुरी रीति से सही रीति से हमको ही अटैक करना है, ये गलत कर रहा है चलो मारो इसको, वो जो है वो यादवों का रोल बजाएंगे। इसीलिए विनाश तीन रीति से होगा, एक होगा न्यूक्लियर वॉर, होना ही है क्योंकि वो लोग भी बहुत फास्ट अपना काम कर रहे हैं। दूसरा है कम्युनल रायट्स, भाई भाई की जो यहां पर होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिविल वॉर जिसको बोलते हैं, धर्म युद्ध, अंदर देशों में खुद एक देश के अंदर धर्म युद्ध, ऐसा ये भी चलेगा, खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि ये जो विकार इतना बढ़ रहा है वो क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा ना, वो यूज में आएगा, तो वो विनाश का कारण बनेगा। और थर्ड है कि जो प्रकृति के पांच तत्व जिससे द्वापर युग में काम किया वो फिर से अभी काम करेंगे, और पांचों ही तत्व एक साथ मिलके ये जितना भी खराब हुआ है न्यूक्लियर वॉर से और ये उसको पूरी सफाई करेंगे, वो प्रकृति के पांच तत्व, जिससे जो नई दुनिया का जो धरणी होंगी वो फिर से फर्टिलाइज हो जाएगी, प्रकृति फर्टिलाइज करेगी उसको, जिससे नई दुनिया में जब फिर शुरू होगा सतयुग का पहला जन्म, तो धरनी बड़ी बहुत अच्छी होगी, हरी भरी होगी, एवरी प्लांटेशन विल बी ब्यूटिफुल। तो माना बुराई का भी अंत अच्छाई के लिए ही होता है, इसका कहने का भावार्थ। तो बहुत सारी बातें हैं इस सब में नहीं ले पाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट में आपको पूरा पिक्चर बता दिया कि धर्म से हम अधर्म पर कैसे पहुंचे, दैट इज द एंड ऑफ द कल्पट्री। अब अधर्म से किसमें जाना है, वापस स्वधर्म में जाकर के सत्य धर्म की स्थापना हम सबको मिलकर करनी है, भले अभी आप कोई भी दैहिक धर्म में क्यों ना हो। और इसके लिए परमात्मा खुद स्वयं अवतरित होकर के हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, और उन्होंने सारे चित्र जितने भी है, सब चित्र जो है उन्होंने ये थ्री वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लियर वॉर, कम्युनल वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, और ये चित्र उन्होंने साक्षात्कार के द्वारा बनाए। ये पूरे कल्पवृक्ष का चित्र है, तो चित्र भी बहुत अलग है, आपको एक भी चित्र ऐसा दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे साक्षात्कार के आधार से बनाए हुए हैं। और तब हमारे पास कोई प्रोफेशनल भी नहीं थे, जो भी हमारे भाई बहन थे वही समझ के वो ड्रॉ करते गए, और जब प्रोफेशनल्स हमारे कॉन्टेक्ट में आए तब थोड़े बेहतर बनाए, लेकिन जो ओरिजिनल आइडिया था वो उसी में ऐसे ही रखा, क्योंकि वो परमात्मा का कहा हुआ था ना, इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये है कल्पवृक्ष, ठीक है। हाँ, क्यों क्यों हर 5000 वर्ष क्यों, कौन रोकेगा बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, क्योंकि नेचुरल है ना, उधर संस्कार काम करते हैं इसलिए नहीं पता होता है, पर अभी वो आत्माओं को मालूम है, अभी वो आत्माओं को मालूम है कि हमें ये पुरुषार्थ करके फिर से ये बनना है। हाँ हाँ देखो, प्रकृति का जो नियम है आप तोड़ सकते हो क्या? आप तोड़ सकते हो प्रकृति का नियम? वही तो, नियम तो नहीं तोड़ पाएंगे ना, प्राकृतिक नियम, सृष्टि के नियम हम तोड़ तो नहीं पाएंगे। तो सृष्टि का नियम क्या है? स्थापना, पालना, विनाश। पुराने का विनाश होता ही है भाई। नहीं नहीं हमने आगे कर्मों की बात सुनी। नो हाँ नो रिलीजन, क्योंकि नास्तिक हो जाते हैं ना थोड़े समय के बाद, उनको धर्म की बातें करनी नहीं है, आत्मा ऐसे हो जाती है। तो उसका भी एक ग्रुप होता है कि हमको नहीं बातें करनी है धर्म की। हाँ, लेकिन अभी हम केवल ह्यूमन रहे, बीइंग खत्म हो गया। अधर्म किसको कहा जाता है? जब आप ह्यूमन रहे लेकिन बीइंग खत्म हो गया, माना आत्मा की कॉन्शियसनेस ही नहीं है। हाँ बोलिए, ह्यूमन ना, हाँ हाँ, पर बीइंग स्ट्रांग होगा, आत्मा होगी ना, स्ट्रांग होगी, एकदम पावरफुल, परफेक्ट, पर ह्यूमन ही होंगे। सबसे सुंदर, ऐसी सुंदरता आपको अभी मिलेगी भी नहीं, इतने सुंदर होंगे हम सब, क्योंकि वो फ्रूट है। ये पुरुषार्थ जब हम करते हैं ना तो हमको जीवन का सब कुछ मिल जाता है टोटल, ठीक है। अभी फिर से आप कोर्स करना सेंटर पर जाके, तो क्या है, दोबारा करने से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी हम क्वेश्चंस नहीं, मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, प्लीज मेडिटेशन के लिए जाएंगे, टाइम हो गया है। जानकी दादी पार्क पे पहुंचना है ना, जानकी दादी पार्क पे पहुंचना है सबको, इसीलिए एक मिनट के लिए डीप साइलेंस में चले जाओ और बिल्कुल झाड़ के बीज में, जहां पर झाड़ के मूल होते हैं, वहां पर अपने आप को महसूस करें। जितनी भी कल्प वृक्ष की वैरायटी है उस सब से डिटैच। एक नया फाउंडेशन बनाने के लिए बीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन।